بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, शरवर की 18, सफर की 2 और सितंबर की 9 तारीख। हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा होगी, उसके बाद आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सफल महिलाएं, और उसके पश्चात आप सुनेंगे आज की बात। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे।
ये तेहरान है, अब आप कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का मानना है कि ईरान को लेकर अमरीकी नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इराकी स्वयंसेवी संगठन का कहना है कि ईरान के सहयोग से ही अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हुआ है। पंजशीर घाटी पर तालिबान के हमले में विदेशियों की सम्मिलिति से ताजिकिस्तान बहुत नाराज है। तालिबान ने 10 अमरीकियों को अफगानिस्तान से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन हो या बाइडेन प्रशासन, ईरान को लेकर अमेरिका की नीतियों में कोई तब्दीली नहीं आई है। राष्ट्रपति ने यूरोपीय परिषद के प्रमुख के साथ बातचीत में ये कहा कि ट्रंप प्रशासन या बाइडेन प्रशासन, ईरान को लेकर अमरीकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन आज भी प्रतिबंध और दबाव की नीतियों पर ही आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय परिषद के प्रमुख चार्ल मिशेल ने बुधवार को ईरानी राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की थी। इस बातचीत में राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान यूरोपीय संघ और यूरोपीय देशों के साथ संबंधों में विस्तार में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान के प्रति गैर रचनात्मक रवैये के लिए भी चेतावनी दी।
इराक के स्वयंसेवी संगठन कतायब हिजबुल्ला के प्रवक्ता का कहना है कि अगर ईरान समर्थन नहीं करता तो आज देश से अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं होता। गुरुवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कतायब हिजबुल्ला के प्रवक्ता मोहम्मद महई का कहना था कि इराकी राष्ट्र एक प्रतिरोधी राष्ट्र है और वह अपनी सरजमीन पर विदेशी सैनिकों के बूटों को सहन नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद देश से अमरीकियों को निकालने के समस्त प्रयास विफल हो गए थे। हाँ, ईरान के समर्थन से अवैध रूप से देश में मौजूद अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है।
इराक की राजधानी बगदाद में आतंकवादी गुट दाइश के 4 बड़े शस्त्र भंडार खोज निकाले गए। इराक के स्वयंसेवी बल हशदुशाबी ने बताया है कि बगदाद के अत्तारिमिया क्षेत्र से दाइश के भूमिगत 4 बड़े शस्त्र भंडारों को ढूंढ निकाल गया। एनुल इराकी वेबसाइट के अनुसार हशदुशाबी की 12वीं बटालियन ने बम डिस्पोजल यूनिट के सहयोग से इन शस्त्र भंडारों का पता लगाया। दाइश ने इनको धरती के नीचे 4 अलग अलग क्षेत्रों में छिपा कर रखा था। इराक में बम डिस्पोजल यूनिट का काम ऐसी स्थिति में जारी है कि जब दाइश ने अभी हाल ही में करकूक प्रांत में हमला करके 13 इराकी सुरक्षा बलों को मार दिया था।
ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर तालिबान के हमले में दूसरे देशों के सहयोग की कड़ी निंदा की है। सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन ने गुरुवार को 20 देशों के प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए कहा कि तालिबान ने पंजशीर घाटी पर हमला करने के लिए तीसरे देश के विमानों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मारे गए। इस वर्चुअल बैठक में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमरीका और नाटो के कुछ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कहा कि अमरीका और उसके घटक 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में उपस्थित रहने के बावजूद वहां की स्थिति को सामान्य नहीं बना सके। अमरीका और उसके साथी देशों ने जाते जाते हजारों आतंकवादियों को अफगानिस्तान के लिए उपहार स्वरूप छोड़ दिया। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना था कि अफगानिस्तान से हमारी लंबी सीमाएं हैं और इस समय हम अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं।
अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन ने ऐलान किया है कि पंजशीर घाटी का 60% से अधिक भाग अब भी हमारे ही नियंत्रण में है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन के प्रवक्ता अली मिसम नजरी ने बताया कि पंजशीर घाटी के सारे ही स्ट्रेटेजिक भाग हमारे नियंत्रण में हैं। ये बात उन्होंने CNN को दिए अपने एक इंटरव्यू में कही। नजरी ने कहा कि रणनीतिक कारणों से हम वहां के मुख्य मार्गों से थोड़ा पीछे की ओर हट गए हैं। मिसम नजरी के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन के साथ झड़पों में तालिबान को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी है। उन्होंने वचन दिया कि निकट भविष्य में पंजशीर पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। याद रहे कि अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने पर बल देते हुए ये कहा है कि हम हारे नहीं हैं और तालिबान के खिलाफ आखिरी बूंद तक हमारे लड़ाके जंग करते रहेंगे। मसूद ने कहा कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक तालिबान से लड़ता रहूंगा।
तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद 10 अमरीकी नागरिकों को इस देश से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। रॉयटर्स के अनुसार एक अमरीकी अधिकारी ने बताया कि तालिबान ने 200 विदेश नागरिकों के अफगानिस्तान से बाहर जाने की अनुमति दे दी है, जिनमें अधिकांश अमरीकी नागरिक हैं। इस अमरीकी अधिकारी के अनुसार इस बात की उम्मीद पाई जाती है कि अफगानिस्तान से 200 विदेशी नागरिकों के बाहर जाने की प्रक्रिया आज गुरुवार से आरंभ हो जाएगी। इससे पहले अमरीकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में अब भी लगभग 100 अमरीकी नागरिक मौजूद हैं जिनको वहां से बाहर निकाले जाने की कोशिशें जारी हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के नए प्रधानमंत्री ने अल जजीरा के साथ बातचीत में उन अधिकारियों से लौटने के लिए कहा है जो काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद देश से फरार हो गए। तालिबान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद ने कहा है कि देश से फरार होने वाले पूर्व अधिकारी अगर वापस लौटते हैं तो तालिबान गुट उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। आखुंद का यह भी कहना था कि उनकी सरकार राजनयिकों, दूतावासों और मानवीय राहत संगठनों की सुरक्षा की गारंटी देगी और वो सभी देशों के साथ सार्थक एवं मजबूत रिश्ते चाहती है।
अफगानिस्तान के शिया धर्म गुरुओं के परिषद का कहना है कि तालिबान के अंतरिम कैबिनेट का गठन देश की जनता की उम्मीदों के खिलाफ है। अफगानिस्तान शिया उलमा परिषद ने बुधवार को एक बयान में कहा कि देश पर तालिबान के नियंत्रण के बाद इस समूह ने देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार के गठन का वादा किया था जिसमें सभी समुदाय और जातीय समूह शामिल होंगे, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन में देश के विभिन्न समुदायों विशेष रूप से शिया समुदाय को नज़रअंदाज कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि योग्य लोगों की उपस्थिति के बिना एक नई कैबिनेट की घोषणा उम्मीदों के विपरीत है।
नॉम चॉम्स्की का कहना है कि अमेरिका के तथा कथित आतंकवाद विरोधी युद्ध ने विश्व के बहुत बड़े भाग को क्षति पहुंचाई है। अमेरिका के एक जाने माने दार्शनिक एवं इतिहासकार नॉम चॉम्स्की का कहना है कि आतंकवाद से संघर्ष के बहाने केंद्रीय एशिया और पश्चिमी एशिया के अधिकांश क्षेत्रों के विनाश से अमेरिका की शक्ति में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने ये बात 11 सितंबर की बरसी के अवसर पर कही है। चॉम्स्की ने कहा है कि 20 साल पहले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, उस समय आतंकवाद का केंद्र अफगानिस्तान के एक क्षेत्र तक ही सीमित था, किंतु अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। जबकि इसी दौरान अमरीका ने बड़े शोर शराबे के साथ आतंकवाद विरोधी अभियान को जारी रखा।
अमेरिका की ओर से उत्तरी कोरिया के विरुद्ध दबाव की नीति के बावजूद उत्तरी कोरिया ने अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करते हुए सैन्य परेड की। यूनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया की ओर से की जाने वाली इस सैन्य परेड की समीक्षा में लगा हुआ है। यह सैन्य परेड रात के समय आयोजित की गई। जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद उत्तरी कोरिया की यह पहली सैनिक परेड है। इससे पहले भी यूनहाप एजेंसी ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के हवाले से बताया कि रात के समय उत्तरी कोरिया ने सैनिक परेड की। उत्तरी कोरिया ने इस देश में एक अन्य बड़ी सैन्य परेड किए जाने की सूचना दी है। उत्तरी कोरिया ने इससे पहले जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के अंतिम काल में भी रात के समय सैन्य परेड की थी। याद रहे कि ट्रंप के काल में परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर वार्ता सन 2019 को रुक गई थी। इस वार्ता के विफल होने का कारण ट्रंप की ओर से उत्तर कोरिया के नेता की इस मांग का रद्द किया जाना था कि उनके देश के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को पहले हटाया जाए।
अमरीकी राज्य वर्जीनिया की राजधानी रिचमंड में एक शताब्दी से भी अधिक समय से लगी कॉन्फेडरेट जनरल ई ली की प्रतिमा को लोगों ने गिराकर तोड़ दिया। पिछले एक वर्ष से चले आ रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद बुधवार को वर्जीनिया में लगी रॉबर्ट ई ली की प्रतिमा को गिरा दिया गया, जो गुलामी के प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। 12 टन भारी गुलामी की प्रतीक इस प्रतिमा को जैसे ही गिराया गया, वहां पर उपस्थित लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और वे नाचने गाने लगे। प्रतिमा गिराए जाने के अवसर पर गवर्नर ने कहा कि ये काम घाव पर मरहम लगाने जैसा है। उन्होंने कहा कि कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली की प्रतिमा का हटाया जाना नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की जीत है, जो लंबे समय से इसे हटाने की मांग करते आ रहे थे। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी को लेकर निराशा जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप की गलतियों में सुधार का वादा किया था, जिसके बाद वियना में परमाणु समझौते की बहाली और ईरान से अमेरिकी प्रतिबंधों की समाप्ति की वार्ता आरंभ हुई थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दुबई से अंग्रेजी भाषा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने अफगान जनता से माफी मांगी है और कहा है कि मैंने अफगानिस्तान से कोई पैसा नहीं निकाला है। श्रोताओ, दुनिया के बहुत से देशों को अब भी कोरोना के कहर का सामना है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताए जाने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर टीकाकरण की गति नहीं बढ़ाई गई तो कोरोना से प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या लाखों में पहुँच सकती है।
भारत में कोरोना के कभी कम और कभी अधिक होते मामलों
के ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी को लेकर निराशा जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप की गलतियों में सुधार का वादा किया था, जिसके बाद वियना में परमाणु समझौते की बहाली और ईरान से अमेरिकी प्रतिबंधों की समाप्ति की वार्ता आरंभ हुई थी, परंतु इस समय ये वार्ता रोकी हुई है और ब्लिंकन इसे फिर से शुरू करने पर निराशा जता रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई 2018 में गैर कानूनी और एक पक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकल गए थे, जिसके बाद अमेरिका और अमेरिका से बाहर ट्रंप की काफी आलोचना हुई थी। साथ ही सैयद मिसम अब्बास,
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी को लेकर निराशा जताई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौते को तार तार करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मई 2018 में इस समझौते से निकल गए थे, जो 2015 में ईरान और विश्व की छह शक्तियों के बीच हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप की इस गलती में सुधार का वादा किया था, जिसके बाद वियना में समझौते की बहाली और ईरान से अमरीकी प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल ये वार्ता रुकी हुई है और ब्लिंकन इसे फिर से शुरू करने को लेकर निराशा जता रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने यूरोपीय परिषद के प्रमुख से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा था कि ट्रंप प्रशासन हो या बाइडेन प्रशासन, ईरान को लेकर अमरीकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वाशिंगटन आज भी प्रतिबंध और दबाव की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने भी अमेरिका को चेता दिया है कि वार्ता और दबाव दोनों एक साथ नहीं चल सकते और इस तरह की कूटनीति का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तेहरान के पास वाशिंगटन पर भरोसा नहीं करने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अविश्वास है, क्योंकि अमरीकियों ने हर मोड़ पर समझौतों और वादों की धज्जियां उड़ाकर दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि उन्हें अपने तथाकथित हितों के मुकाबले में किसी भी समझौते या वादे की कोई परवाह नहीं है। अमरीका वियना वार्ता में ईरान को किसी भी तरह की कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। इसके विपरीत वो प्रोपेगंडा करके ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु कार्रवाइयों के बारे में नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। हालांकि ईरान पूर्व की तरह आईएईए से पूर्ण सहयोग कर रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शिता से काम ले रहा है, इसलिए अगर वियना में वार्ता फिर से शुरू नहीं होती है या वार्ता नाकाम रहती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दुबई से अंग्रेजी भाषा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने अफगान जनता से माफी मांगी है और कहा है कि मैंने अफगानिस्तान से कोई पैसा नहीं निकाला है। अशरफ गनी पर आरोप है कि अफगानिस्तान से जाते समय वो अपने साथ 16 करोड़ डॉलर ले गए हैं, किंतु तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के पूर्व अधिकारियों और जिम्मेदारों के बैंक अकाउंट को बंद कर दिए हैं। बेनाम यजदानी की रिपोर्ट पेश करें साथ ही रविश जैदी।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दुबई से अंग्रेजी भाषा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने अफगान जनता से माफी मांगते हुए कहा है कि हम अफगानिस्तान से कोई पैसा लेकर नहीं गए। अशरफ गनी पर आरोप है कि अफगानिस्तान से भागते हुए वो अपने साथ 16 करोड़ डॉलर ले गए हैं, किंतु अब तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के पूर्व अधिकारियों और जिम्मेदारों के बैंक अकाउंटों को पूरी तरह बंद कर दिया है। तालिबान ने इसी प्रकार नई सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद अपने पहले फैसले में प्रदर्शन करने के नियम की घोषणा की है। तालिबान के एक सुरक्षा कर्मी का कहना है कि प्रदर्शन की कुछ शर्तें हैं। उसकी एक शर्त यह है कि प्रदर्शन की पहले से अनुमति ली जानी चाहिए। प्रदर्शन का समय, स्थान, उद्देश्य और नारे स्पष्ट होने चाहिए ताकि हम प्रदर्शन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकें। इसी प्रकार पंजशीर में भी विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। आज अहमद शाह मसूद का शहादत दिवस है। तालिबान ने काबुल में सुरक्षा व्यवस्था आज प्रतिदिन की अपेक्षा कड़ी कर दी है। तालिबान ऐसी स्थिति में नए मंत्रिमंडल की गतिविधियों को आरंभ करने जा रहा है, जब अभी नए मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की घोषणा भी नहीं हुई है। अफगानिस्तान के लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। काबुल से IRIB के लिए बहनाम यजदानी की रिपोर्ट।
श्रोताओं, दुनिया के बहुत से देशों को अब भी कोरोना के कहर का सामना है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताए जाने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ज्ञात रहे कि भारत में अब तक कोरोना से 4,40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71,65,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत में कोरोना के कभी कम और कभी अधिक होते मामलों के बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में शुरू होने की आशंका है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें अक्टूबर में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में तीसरी लहर के दौरान बच्चों को लेकर अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि देश में टीकाकरण की रफ्तार को नहीं बढ़ाया गया तो तीसरी लहर में हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंच सकता है। उधर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गुरुवार को कल के मुकाबले कोरोना के 14% अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,263 नए मामले सामने आए हैं और 338 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40,567 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट गए हैं। इस समय देश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 3,93,614 है। भारत में इस बीमारी में अब तक 4,41,749 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी राज्य केरल में कोरोना का प्रकोप सबसे अधिक है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,196 नए मामले सामने आए हैं और 181 लोग हताहत हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी में किसी की जान नहीं गई है। राजधानी में हालांकि सक्रिय मामले एक बार फिर 400 के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 8 सितंबर तक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,51,701 टीके लगाए गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में अब तक 71,65,97,428 टीके लगाए जा चुके हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोतो, शमशाद काजमी की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोतो, हमारा ये कार्यक्रम आप 61 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करेगा। ताजा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है मरियम मेहंदादी और मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ने वाली ईरानी महिलाओं से आपका परिचय करवा रहे हैं।
अलीश वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ईरानी महिला खिलाड़ियों के चैंपियन बनने की खबरें जब विश्व मीडिया में प्रसारित हुई तो खेल के शौकीन लोगों के दिमाग में शायद पहला सवाल ये आया होगा कि क्या ईरान में महिलाएं भी कुश्ती लड़ सकती हैं। अलीश वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ईरानी महिला खिलाड़ियों की चैंपियनशिप से पता चलता है कि ईरानी महिलाओं की कुश्ती का स्तर उस दर्जे पर पहुँच चुका है कि एक 20 साल की खिलाड़ी ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। अलीश वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के नूर सुल्तान शहर में हुआ। इस मुकाबले के दूसरे ही दिन 57 किलोग्राम की कैटेगरी में हानिया आशूरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 7 किलोग्राम की कैटेगरी में फातिमा फत्ताही सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। इसी तरह से 55 किलोग्राम की कैटेगरी में जहरा यजदानी ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। अंततः ईरान की नेशनल टीम ने 93 अंकों के साथ चैंपियनशिप जीत ली। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान क्रमशः 89 और 69 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
ईरान में महिला कुश्ती के इतिहास में पहली गोल्ड मेडलिस्ट हानिया आशूरी ने सिर्फ एक साल पहले ही इस खेल में प्रवेश किया था। किरमानशाह की रहने वाली आशूरी ने अपनी पहली ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में जॉर्जिया, किर्गिस्तान और मंगोलिया की अपनी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में बढ़त बनाते हुए फाइनल में बेलारूस की अपनी प्रतिद्वंदी को हरा दिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गई। गोल्ड मेडल जीतने वाली ईरान की पहली महिला पहलवान के तौर पर उनका कहना था, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिद्वंदी मुझे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे क्योंकि ईरान इससे पहले तक चैंपियनशिप जीतने के दावेदारों में शामिल नहीं था, लेकिन इन मुकाबलों में मैंने गोल्ड मेडल जीता और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ हमारी टीम चैंपियनशिप जीतने में सफल रही। बेहतरीन टीम का चयन किया गया था और सभी खिलाड़ियों ने
कड़ी मेहनत की। इस टीम का अगर समर्थन किया जाता है तो निश्चित रूप से ये अगले मुकाबलों में भी इस चैंपियनशिप को दोहरा सकती है और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती है।
इस युवा ईरानी महिला का जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रयासों और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उनका कहना है कि मैं पश्चिमी इस्लामाबाद में पैदा हुई थी और वहीं रहती हूँ। अभ्यास के लिए मुझे अक्सर किरमांचा जाना पड़ता था। पिछले साल जब भूकंप आया था तो मैं वहीं थी, लेकिन खुदा का शुक्र मेरे परिवार को और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे आसपास कई घर तबाह हो गए। भूकंप के बाद परिस्थितियां बहुत कठिन थीं, लेकिन मैंने इसी कम उम्र में संघर्ष का फैसला किया। खुदा का शुक्र है कि मैं सफल हुई और साबित कर दिया कि भूकंप भी मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता।
दोस्तों, हानिया आशुरी इससे पहले फुटसाल खेलती थीं और कुछ समय तक उन्होंने स्वदेशी और स्थानीय खेल प्रबंधन की देखरेख में लकड़ी खींचने के खेल में भी हाथ आजमाया और इसमें विश्व कांस्य पदक जीता। ये स्वदेशी और स्थानीय खेलों में से एक है। अलीश मध्य एशियाई देशों में लड़ी जाने वाली एक परंपरागत कुश्ती है जो आमतौर पर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में लड़ी जाती है और वहाँ के लोग इसमें काफ़ी माहिर होते हैं। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत से इस कुश्ती का भौगोलिक रूप से विस्तार हुआ है और आज कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे लिथुआनिया और बेलारूस में अलीश लड़ने वाले पहलवान मुख्य रूप से मिल जाएंगे।
हानिया आशुरी का मुकाबला फाइनल में एक बेलारूसी प्रतिद्वंदी के साथ हुआ था। पूर्वी यूरोपीय देशों में बुल्गारिया 54 अंकों के साथ महिला अलीश कुश्ती प्रतियोगिता में पांचवें स्थान पर रहा। इस साल की विश्व चैंपियनशिप में 15 देशों ने भाग लिया। इन देशों के बीच मुकाबलों में जहां फ्रीस्टाइल और पश्चिमी शैली की कुश्ती के भी मुकाबले हुए, ईरानी महिला चैंपियनशिप का अपना महत्व है।
कहा जा सकता है कि ईरानी महिलाओं द्वारा अलीश रेसलिंग के स्वागत का एक कारण यह है कि अलीश कुश्ती खिलाड़ियों की ड्रेस वर्ल्ड और ओलंपिक रेसलिंग चैंपियनशिप्स महिला खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा होती है। वास्तव में अलीश रेसलिंग खिलाड़ियों की ड्रेस ईरान के आधिकारिक मानदंडों के करीब होती है और इससे कुश्ती में रुचि रखने वाली ईरानी महिलाएं खुश होती हैं जो अपने हिजाब के साथ कुश्ती में अपनी प्रतिभा दर्शा सकते हैं। अगर ईरानी महिला पहलवान विश्व महिला और ओलंपिक रेसलिंग चैंपियनशिप में हिजाब के साथ भाग ले सकती तो ईरानी महिला पहलवान इन महत्वपूर्ण मंचों पर भी अपनी किस्मत आजमाने में सफल रहती। दूसरे शब्दों में अलीश रेसलिंग एक ऐसा मंच है जहां ईरानी महिला पहलवान अपनी प्रतिभा दर्शा सकती हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा सकती हैं।
दोस्तों, 55 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीतने वाली ज़हरा यज़दानी इस प्रतियोगिता की पूर्व प्रतियोगिताओं से तुलना करते हुए कहती हैं, ये साल एक ऐसा साल था जब विश्व प्रतियोगिता सिर्फ एक भाग में आयोजित हुई। इससे पूर्व ये प्रतियोगिता दो भागों, क्लासिक और अलीश में आयोजित होती थी, जिससे मेडल जीतने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन इस साल हमारे पास मेडल जीतने के लिए सिर्फ एक चांस था, जिससे मुकाबला कठिन हो गया था। खुदा का शुक्र है कि हम चैंपियनशिप जीतकर भरे हाथों से घर लौटे हैं।
जुईबार उत्तरी ईरान का एक शहर है जो कुश्ती के लिए मशहूर है। हालांकि यहां महिलाओं की कुश्ती की शुरुआत कुछ वर्ष पहले ही हुई है, लेकिन अब ये किसी के लिए नई बात नहीं रह गई है। वर्तमान में महिलाओं के बीच कुश्ती काफी लोकप्रिय हुई है और कई महिलाओं ने इसे अपनाया है। कह सकते हैं कि कुश्ती यहाँ के नागरिकों के डीएनए में है और इस खेल में पुरुष या महिला का कोई अंतर नहीं है। मेरी तमन्ना ओलंपिक में खेलने की है, लेकिन ओलंपिक में ये शैली शामिल नहीं है, इसलिए अलीश का ओलंपिक में शामिल होने की आशा नहीं की जा सकती। हालांकि मैं ओलंपिक में खेलना चाहती हूँ। सिल्वर मेडल जीतने वाली फातिमा फताही का मानना है कि अगर महिलाओं की कुश्ती का ज्यादा मदद की जाएगी तो ईरान की महिला पहलवान ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रतिभाओं को दर्शा सकती हैं। जुइबार के लोग जिस तरह से पुरुषों की कुश्ती का समर्थन करते हैं, उसी तरह से वे महिला कुश्ती का भी समर्थन करते हैं।
निसंदेह ये दावा नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में महिलाओं के उच्च व्यक्तित्व का वैसा ही चित्रण किया गया है जिस तरह से किया जाना चाहिए था। ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता के मुताबिक प्रगति के पंथ पर ईरानी महिलाओं की अभी शुरुआत है। मानवता के पहलुओं से मर्दों और औरतों में कोई अंतर नहीं है। महत्व की दृष्टि से इंसानियत की तुलना में लिंग का दर्जा बाद में आता है। ईरान की इस्लामिक क्रांति के 40 साल के अनुभव से पता चलता है कि इस्लामी समाज में इस्लामी और इंसानी मूल्यों और एक इंसान की आम जिम्मेदारियों के अनुसार पुरुष और महिलाएं एक समान और एक स्तर के हैं। सिर्फ सृष्टि में अंतर के आधार पर उनकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ही महिलाओं की सामाजिक जिम्मेदारियां अर्थपूर्ण होती हैं। लेकिन ये पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में बाधा नहीं बन सकती हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है, आरएसएस की तुलना तालिबान से क्यों। भारत का एक संगठन आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है और इसी से जुड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा इस समय सत्ता में है। भारत के मशहूर गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने एनडीटीवी इंडिया के कार्यक्रम में बोलते हुए कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तालिबान से तुलना कर दी। उन्होंने कहा, जिस तरह तालिबान एक इस्लामी राष्ट्र चाहता है, ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ये सभी लोग एक जैसी विचारधारा के ही हैं, भले ही ये मुसलमान हों, ईसाई हों, यहूदी हों या हिंदू हों।
You see, we should look at those people in India who want to achieve the same goal, segregation. There have been cops that have said the girls should not have mobile telephones. There have been anti-Romeo brigade moving in the same direction. Trying to achieve the same thing. I mean, I see an uncanny resemblance between the Taliban and people who want to be like Taliban. Yeah, still, they have achieved a lot in recent times, but they would like to reach the position where the Taliban are. As a matter of fact, I have always maintained that if you look at the right wing all over the world, whether it's a Muslim right wing or a Christian right wing or Jewish wing or a Hindu right wing, their similarity is uncanny. You see, what are they trying to achieve?
जावेद अख्तर ने आगे कहा कि जाहिर तौर पर तालिबान बर्बर है और उसके कृत्य निंदनीय हैं, लेकिन जो लोग आरएसएस बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं वो सब एक जैसे ही हैं।
तालिबान वांट टू मेक अ इस्लामिक कंट्री, राइट? दीज पीपल वांट टू मेक अ हिंदू राज। दे सी दैट एनीथिंग व्हिच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेडिशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। दैट्स व्हाट दे से। They say that modernization brings corruption. They have no love lost for minority like Taliban. They want women to be at home and on the margin like Taliban. So what is the difference between the two? So where are you different from them? And how are you so upset? And by being upset, you are becoming more Taliban. That is what they are doing. That is what these are Talibani traits.
बहस के दौरान जावेद अख्तर ने ये भी कहा कि उन्हें भारतीय लोगों की समझ पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले अधिकतर लोग सहिष्णु हैं, इसका सम्मान होना चाहिए, भारत कभी भी तालिबानी राष्ट्र नहीं बनेगा। जावेद अख्तर के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
जब तक जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते उनके परिवार की कोई फिल्म चलने नहीं देंगे। जब तक जावेद अख्तर,
बीजेपी नेता राम कदम ने उनके बयान का विरोध करते हुए कहा कि जावेद अख्तर हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि संघ और विश्व हिंदू परिषद के करोड़ों कार्यकर्ताओं से जब तक हाथ जोड़कर जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी और उनके परिवार की कोई भी फिल्म इस महाभारती की भूमि पर नहीं चलेगी।
महाराष्ट्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि वे जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। नारायण राणे जी के बारे में तो बहुत उन्होंने जल्दबाजी की थी, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस इस प्रकार से तैनात की थी, मान करके चलो कि बहुत बड़ा अकाल आया। इस बार क्यों चुप है? इतना ही शौक है जावेद अख्तर जी को तो केवल मात्र 24 घंटे के लिए अफगानिस्तान जाकर के दिखाए है उनमें साहस? कब गए हो संघ की शाखा में? कब गए विश्व हिंदू परिषद की बैठक में? कोई अध्ययन नहीं। तालिबान के साथ जोड़ोगे? इसी संघ के स्वयं सेवक आज भारत की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। यदि वे इस प्रकार का वक्तव्य देते और तालिबानी राज होता तो अब तक क्या उन्हें छोड़ दिया गया होता? वे इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की बयानबाजी देने का साहस इस कारण कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का राज है। तो उनका जवाब यही है कि वे हाथ जोड़ करके माफी मांगे, अपना बयान वापस ले। जब तक वो बयान वापस नहीं लेता समूचे देश के सड़कों पर इसी प्रकार से आंदोलन प्रखर तेजी से दिखेगा।
वहीं अपने आप को बीजेपी महाराष्ट्र यूनिट के कानूनी सलाहकार बताने वाले आशुतोष दुबे नामक व्यक्ति ने मुंबई पुलिस को जावेद अख्तर के खिलाफ शिकायत दी है। दुबे ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर जावेद अख्तर के खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। खुद आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यकर्ताओं में काफी रोष था। उनका कहना था कि जावेद अख्तर को भारत से निकाल देना चाहिए, उन्हें तालिबान में शामिल करवा देना चाहिए।
जावेद अख्तर को तालिबान में शिफ्ट कर देना चाहिए था तो वहाँ की ज्यादा शोभा देंगे और संघ हमारा लोगों की सेवाएं करता है, देश को जोड़ के रखता है, संस्कार सिखाता है।
इनको जाके तालिबान में ऐड हो जाना चाहिए और तालिबान के साथ इनको रहना चाहिए। इनका कोई हक नहीं बनता है कि ये भारत में रहें।
जावेद अख्तर की दिक्कत बस इतनी है कि उनको भाईचारा, जैसे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उनको ज्यादा पसंद नहीं है। एक बार जरा वो तालिबान जाके तो देखें, वहाँ जरा सा भी ये कुछ बोल दे, वहाँ उनके हजाम कर दी जाएगी, हजामत कर दी जाएगी उन लोग की। जितना जावेद अख्तर जी बोल रहे हैं कि ऐसा RSS ये है, RSS वो है, RSS जो भी कर रही है ना, सबके भले के लिए कर रही है।
सपोर्ट उन्हें करती है तालिबानों का, आतंकवादियों का, उठा के फेंक देना चाहिए तालिबान में।
जब वहाँ पे कश्मीर में जब पाकिस्तान झंडे हो रहे थे, जब गोला बारूदे चल रही थी, जब पत्थरबाजी चल रही थी, तो कहाँ थे जावेद अख्तर? मैं ये सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा। जावेद अख्तर RSS के बारे में कह रहे हैं, पहले हम ये पूछते हैं आप थे कहाँ इन सब, जब ये सब चीज हो रहा था तब आप कहाँ इस चांद बैठे थे?
RSS के आलोचक टिप्पणीकार इस संगठन के बारे में कहते हैं कि इसके बहुत सारे रूप हैं। उनका कहना है कि RSS के निशाने पर केवल अल्पसंख्यक नहीं बल्कि उसका असली निशाना हिंदू समाज है। ये कहना है अभय कुमार दुबे का।
पहली बात तो ये है कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखते हैं। क्या वो एक महज अल्पसंख्यक विरोधी प्रोजेक्ट है? वो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक विरोधी है, लेकिन क्या वो सिर्फ अल्पसंख्यक विरोधी प्रोजेक्ट ही है? मेरा मानना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य प्रयोगशाला अल्पसंख्यक नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य प्रयोगशाला हिंदू समाज है। और हिंदू समाज इस देश में 80-85% है, ये केवल एक आबादी मूलक तथ्य नहीं है। इसको आप ये कहकर नहीं टहका सकते कि ये एक डेमोग्राफिक फैक्ट है। ये जो 80-85% लोग हैं, इन 80-85% लोगों की तमाम विविधताओं को कायम रखते हुए इनके ऊपर से, नीचे से नहीं, इनके ऊपर से एक राजनीतिक एकता की ग्रिड डालने का प्रयोग बहुत दिनों से चल रहा है। सावरकर वगैरह का प्रोजेक्ट ये था कि वो बॉटम अप काम करना चाहते थे कि जातियों को तोड़िए, जातियों को मिलाइए और फिर इस तरह हिंदू एकता बनाइए। बालकृष्ण मुंजे भी इसी तरीके से करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय संसद ने कहा कि आप हमारे आराध्य पुरुष हैं, आप हमारे यहाँ व्याख्यान वगैरह दीजिए, लेकिन हम आपकी ये आपकी रणनीति नहीं मानेंगे। हम हिंदू समाज में जाति प्रथा वगैरह से सबसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, ना इन्हें बढ़ाना चाहते, ना इनसे कोई छेड़छाड़ करना चाहते। हम तो कहते हैं कि राजनीतिक प्रश्न पर सब लोग एक हो जाएं, बाकी सब अपना शादी ब्याह और सब में अलग अलग रहें, जैसे चलते हैं वैसे ही चले, लेकिन राजनीतिक सवाल के ऊपर हम एक हो जाएं। तो जो पॉलिटिकल यूनिटी का की अवधारणा है, उस अवधारणा को धीरे धीरे कर समय के साथ में पुख्ता किया गया है। उसको ऊपर से ग्रिड एक डाली जाती है ना, ऊपर से एक जाल डाला गया है पूरा हिंदू समाज के ऊपर। वो शाखा में एक घंटे के लिए जाति भूलकर साथ साथ ध्वज प्रणाम कर सकता है, नमस्ते सदा वत्सले गा सकता है और सारे काम कर सकता है, और शाखा के बाहर जाकर फिर से अपनी जातियों में रम सकता है। इस तरीके से पिछले 90 साल से राष्ट्रीय समिति को 90 साल हो गए हैं, 90 साल से हिंदू समाज को उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाया है।
मशहूर विचारक और RSS के आलोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद का कहना है कि RSS पूरे हिंदू समाज को गुलाम बनाने की कोशिश में है।
हम अक्सर ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद है, और पिछले कुछ वर्षों में मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये कहना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद है ऐसा कहने से हिंदुओं को भ्रम होता है कि ये इस राष्ट्र में उनकी भी कुछ चलेगी, लेकिन वो आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुलाम ही रहेंगे। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि यह दरअसल पूरी परियोजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस राष्ट्र पर या भारत पर कब्जे की परियोजना, उसके हिस्से पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा हो जाए, और हिंदू अपना त्योहार कैसे मनाएंगे, केरल का हिंदू भी त्योहार कैसे मनाएगा, तमिलनाडु का हिंदू भी त्योहार कैसे मनाएगा, असम का हिंदू भी कैसे मनाएगा, ये कौन तय करेगा? यह सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तय करेंगे। मंदिर कैसे चलेंगे ये भी वो तय करेंगे। तो हिंदू समाज एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुलाम समाज है।
भारत बिल्कुल अलग प्रकार का देश और समाज है, जहां जातियों, समुदायों, संप्रदायों और धर्मों की बहुत अधिक विविधता है। इस देश की खूबसूरती ये रही है कि यहां सभी जातियां और धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन गुजारते रहे हैं। अलबत्ता ये भी सच्चाई है कि इसी समाज में कट्टरपंथी विचार के लोग भी रहे हैं, लेकिन वो समाज का बहुत छोटा सा हिस्सा समझे जाते हैं। वैसे इस समय इसी संगठन से जुड़ी पार्टी भाजपा भारत पर राज कर रही है, लेकिन टीकाकार ये मानते हैं कि इस स्थिति को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय समाज की मानसिकता आरएसएस जैसी हो गई है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने में बहुत सारे कारक प्रभावी होते हैं। बहरहाल इस समय आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर बवाल तो मच गया है, लेकिन इस प्रकार की तुलना इससे पहले भी की जाती रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक जमाने में आरएसएस के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के उन मदरसों से कर दी थी जहां से पढ़कर तालिबान निकलते हैं। उस बयान पर भी भारी बवाल मचा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या भारत, कट्टरपंथ और चरमपंथ पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को सहन न करने की आदत हमेशा समाज में समस्याएं पैदा करती है, जिससे समाज एकजुट होकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय आपस में उलझकर विकास का सफर भूल जाता है। इस तरह वो नाव जो पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ रही है, तट की ओर बढ़ने के बजाय बीच मझधार में अटक जाती है, जो किसी एक भाग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बेहद हानिकारक है। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, भी आपने कार्यक्रम सुना आज की बात, जिसे पेश किया अहमद अब्बास ने। कार्यक्रमों के बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। इसी के साथ हमारी ये सेवा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.